जय धवला, पुस्तक 15, लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैचायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। मुनिय परमत्थ विद्धर, मुनिवर वीरेहि सिद्ध विज्जयिन्, जासन्तु आवयवदी पसियौ सुयदेवया मध्यम्, सुसुदेवयाय भक्ति सुदोव जोगो भावियो सम्मम्। आवहै नाण सिद्धिम्, नाणफलम् चाविनिर्माणम्, तो सुदेवयमिनमो तिक्कुत्तो पणिनियोन भक्तिये। गोच्छामि जहासुत्तम् चारित्रमोहसफवणविहिम्।
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउड तथा चौनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में जो 15वां अर्थाधिकार है चारित्र मोक्ष अपना का, और कृष्टिकरण से यहाँ शुरुआत हुई थी। अब हम आए हैं पृष्ठ संख्या 41 पर, 41। जब हमने पहले देखा था कृष्टिकरण एक अंतर्मुहूर्त चलता है, उसके पहले क्या हुआ था, कृष्टिकरण के पहले क्या हुआ था, अश्वकर्ण करण। ये कब शुरू होता है, तो अपगत वेद होने पर। क्रोध कषाय उदय उसका तो पहले से ही चल रहा था, परंतु अपगत होने के पहले समय से लेकर वहां जितना क्रोध वेदक काल बाकी है, उसके स्थूल रूप से 3 भाग हम कहेंगे। तो पहला त्रिभाग है वो अश्वकर्ण करण, और उसी के साथ साथ अपूर्व स्पर्धक बनते हैं। जो अश्वकर्ण वाला जो है वो तो चलता ही रहता है, क्योंकि एक बार जो क्रोध मान माया लोग जो हम घटते हुए अनुभाग देखे थे, ऐसे ही अभी आगे चलेंगे। तो दूसरा त्रिभाग है उसमें कृष्टि करने का कार्य होता है, कृष्टिकरण काल कहते हैं, और तीसरा त्रिभाग है उसको हम कृष्टि वेदक काल कहेंगे, क्योंकि अभी तक पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से वहां उदय चल रहा था, यानी अधिक अनुभाग वाला था। अब द्वितीय स्थिति में से जो कृष्टि बनाई है वो पहले स्थिति में आकर उसकी रचना होती है। निषेकों में कृष्टि रूप से परमाणु आते थे, पहले स्पर्धक रूप से थे। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति ये निषेक की अपेक्षा कथन है, उसमें अंतर पड़ा है, निषेकों में अंतर है। और वहां तो प्रत्येक निषेक में तो प्रत्येक अलग अलग अनुभाग वाले परमाणु है। तो यहाँ प्रथम स्थिति में अभी जो आवली प्रमाण काल जिसका बाकी है, या एक समय का मावली प्रमाण निषेक है, उसमें पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से परमाणु है, परंतु अभी उनका उदय नहीं होगा। अभी नई रचना कृष्टि रूप से हुई है प्रथम स्थिति में, वो कृष्टि वाले परमाणु प्रथम स्थिति में आ गए हैं, और जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक उच्चिष्ठावली प्रमाण थे, एक एक निषेक के परमाणु कृष्टि रूप होकर उदय में, एक एक समय में वहां जो अधिक अनुभाग है वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आएगा। इस तरह से वो पूर्व अपूर्व स्पर्धक नष्ट हो गए। पूर्व अपूर्व स्पर्धक द्वितीय स्थिति में भी कुछ पड़े, कौन से, तो एक समय कम द्वावली प्रमाण जो नवक समय प्रबद्ध किस अपेक्षा कहा, स्पर्धक रूप से जो बंद हुआ था वो उसकी अपेक्षा। यहां से आगे कृष्टि रूप से बंद होगा, उदय भी कृष्टि रूप से होगा और बंध भी कृष्टि रूप से होगा। उस अपेक्षा से स्पर्धक रूप से बंधे हुए अपूर्व स्पर्धक कहेंगे, तो ये अंतिम उसके अंतिम नवक बंध है, उसका अंतिम समय प्रबंध है। अंतिम है ना, एक समय कम आवली, दो आवली प्रमाण। ये जो नए नए बंधे हुए हैं उनका जो कृष्टि करने का जो कार्य है वो कृष्टि वेदक काल में ही पूरा होगा। इतनी बात ख्याल में, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हमने ये बात यहां से शुरू की थी 39 पेज पर। पहली लाइन में क्या लिखा था, पुष्टिकरण काल के समाप्त होने पर तदनंतर समय में ही द्वितीय स्थिति में से आकर्षित कर पुष्टियों को उदयावली में प्रवेश कराता है। यानी उनकी निषेक रचना जो होती है, एक पुष्टि रूप से वहां परमाणु आएंगे, क्योंकि अभी उनका उदय शुरू होने वाला है, इसलिए उनकी रचना नई हो जाएगी। वो कितना, एक समय कम द्वावली प्रमाण निषेक है, उच्चिष्टावली के काल की अपेक्षा कहेंगे तो आवली प्रमाण है। अब उसी समय हम सूत्र सूत्र पढ़ेंगे। उस समय संवलनों का स्थितिबंध चार महाप्रमाण होता है। पुष्टि वेदक के पहले समय में, पुष्टिकरण के पहले समय में 8 वर्ष में अंतर्मुख कम इतना हुआ था। स्थिति सत्कर्म यहां 8 वर्ष हो जाता है, और 3 घाती कर्मों का स्थिति बंध भी और सत्कर्म भी संख्यात हजार यथा योग्य कहेंगे उसको। नाम गोत्र वेदनीय का भी स्थिति बंध तो संख्यात हजार वर्ष है, परंतु स्थिति सत्व असंख्यात हजार वर्ष है। उसके बाद का जो सूत्र है, क्रोध संज्वलन का जो अनुभाग सत्कर्म है, सत्ता में जो अनुभाग पड़ा है, एक समय कम उदयावली में निक्षिप्त है, वह सर्वघाती है। एक समय कम उदयावली यानी अभी जो उच्चिष्ठावली जिसको हम कहेंगे, उसमें अनुभाग किस प्रकार से है सत्ता वाला, तो सर्वघाती रूप से है। सत्कर्म की बात है, अनुभाग सत्कर्म की। उदय और बंध एक स्थान ही हुआ था अंतरकरण के पश्चात वाले समय से लेकर। यहां सत्ता की बात है, जो उच्चिष्ठावली में पूर्व पूर्व स्पर्धक है, पूर्व स्पर्धकों में से कुछ जो मैक्सिमम अनुभाग है उसको यहां बता रहे हैं, वो सर्वघाती रूप से है द्विस्थानीय, यानी दारू वाले, परंतु उसमें सर्वघातीपना अभी है। उसका उदय तो होने वाला नहीं उस रूप से, पहले भी नहीं था, एक स्थानीय रूप से ही उदय चल रहा था। और बाकी जो नयोक समय प्रबद्ध है, एक समय कम दो आवली, वो देशघाती है। फिर भी किस रूप से, तो स्पर्धक रूप से। इतनी बात ख्याल में आई ना, नहीं उसमें चर्चा बहुत हुई थी कब। वो एक स्थानीय रूप और देशघाती है, क्योंकि पुष्टिकरण जब कर रहा है, करण की बात, जब पुष्टि बनाने का कार्य चल रहा है द्वितीय स्थिति में, तो नया बंध स्पर्धक रूप से हो रहा है। अब पुष्टि वेदक शुरू होगा, अब स्पर्धक रूप से बंधन नहीं होगा, यहां से पुष्टि रूप से होगा। तो कहते हैं ये जो उच्चिष्ठावली और नवक बंध इनको छोड़कर बाकी चार संज्वलनों का जो अनुभाग सत्व है, सत्ता में पड़ा हुआ, वो किस रूप से, तो पुष्टि रूप से। पुष्टि करने का कार्य यहां पूरा हुआ है। पुष्टि करने का कार्य पूरा होने पर, पुष्टि होने से बाकी क्या क्या है, तो उच्चिष्टावली प्रमाण जो निषेक में परमाणु है वे, और नवक समय प्रबद्ध, एक समय कम दो आवली प्रमाण काल में बंधे हुए। वो नवक बंध जो हुए है वो तो देशघाती है, परंतु स्पर्धक रूप से है, और जो उच्चिष्ठावली में है वो सर्वघाती रूप से, वो भी स्पर्धक रूप से। यहां तक अपनी बात नहीं थी। हाँ, उच्चिष्ठावली का अर्थ उदय होते होते अभी स्पर्धक रूप से इतने ही पहली स्थिति में, आवली प्रमाण निषेक बाकी रहे, उसको कहेंगे उच्चिष्ठावली। अब इसके आगे कृष्टि के परमाणु नीचे आएंगे द्वितीय स्थिति में से, और उसकी फिर दोबारा निषेक रचना हो जाएगी। हाँ ये उदयावली में है परंतु उसका उदय नहीं होने वाला है, ये पर रूप से होकर उदय में आने वाले हैं। है तो आवली प्रमाण, उदय के समय से लेकर आवली प्रमाण है, यानी ये पहली स्थिति बहुत बड़ी थी अंतर्मूर्त वाली, घटते 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 आवली प्रमाण शेष रही। अब तक तो पूर्व पूर्व स्पर्धक रूप से भी उदय चल रहा था उनका, दोनों रूप से, पुष्टि रूप से उदय नहीं था। अब इस पूर्व पूर्व स्पर्धक रूप के परमाणु इसमें पड़े हैं। अब यहाँ द्वितीय स्थिति में से कृष्टि के परमाणु नीचे आकर इनकी इतनी स्थिति तैयार हो, तो इनका क्या होगा, एक एक समय कृष्टि रूप होकर उदय में आएंगे। इसको कहते हैं उच्चिष्ठावली। पुरुष वेद में भी ऐसे होती है, फिर हमने देखे थे कि क्रोध में ऐसा होगा, अंत में मान में होगा, माया में होगा, क्योंकि उसकी अपनी एक आवली बाकी रहती है, तो दूसरे परमाणु ऊपर से आते हैं और उनकी फिर दोबारा प्रथम स्थिति तैयार होती है बड़ी, फिर वो क्रम से घटते 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 फिर उसके परमाणु नष्ट हो जाएंगे, फिर वो आगे वाला जो कषाय है उसकी निषेक रचना होगी वहां। इसको उच्चिष्ठ आवली कहते हैं। हम कहते ना उच्चिष्ठ ने भी वो तो झूठा कुछ थाली में रह जाते, बाकी रहता है बच्चा वो, ये उच्चिष्ठ अभी। हाँ
लेकिन जो कृष्टिकरण का काल चल रहा था तब भी पड़े हुए थे, सर्वघाती पड़े हुए थे।
हाँ परंतु सर्वघाती रूप से उदय नहीं था,
वो कैसे, वो उसमें
टर्न होकर वैसे ही उदय
स्पर्धक रूप में जा रहे थे, देशघाती स्पर्धक के रूप में।
हाँ देशघाती
सर्वघाती
एक स्थानीय देशघाती होकर उदय चल रहा था, क्योंकि हमने देखा था अंतर होने के पश्चात वाले समय में मोहनीय का बंदर उदय एक स्थानीय देशघाती हो जाता।
अश्वकर्ण जब स्पर्ध बना रहे थे, अपूर स्पर्ध बनाए,
हाँ
उस समय क्या उदय में आ रहा था, स्पर्ध का
अंतर तो उसके बहुत पहले हुआ था ना अश्वकर्ण।
जब अपन ने स्पर्ध बनाए ना, अपूर स्पर्ध बनाए,
हाँ
तो उस समय क्या क्या उदय आ रहे थे,
पूर्व अपूर्व स्पर्धक
वही उदय,
दोनों अपूर्व स्पर्धक बन रहे थे, तो पूर्व और अपूर्व स्पर्धक दोनों उदय में आ रहे, और जब कृष्टि बन रही थी तो कृष्टि उदय में नहीं आ रही, ये विशेषता है दोनों में। अपूर्व स्पर्धक बनते हुए उसका उदय भी चल रहा था, पूर्व स्पर्धक भी अपूर्व स्पर्धक भी, परंतु जब कृष्टि बनी तब कृष्टि का उदय नहीं हुआ, इसलिए प्रथम स्थिति में पूर्व अपूर्व स्पर्धक दोनों आए थे, उसमें मैक्सिमम है उसका उदय कहलाता है ना, और वो भी सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे थे, टर्न होकर, जैसे हमारा मति ज्ञानावरण में होता है, एक निषेक ऊपर का देखो तो वहां सर्वघाती परमाणु पड़े हैं, देशघाती होकर ही उदय में आएंगे, वैसे वहां पर भी हो रहा था अब तक। अब यहां हम 41 पृष्ठ पर आए, कौन सा सूत्र, वे स्पर्धक स्वरूप है, नवक बंध है वो स्पर्धक स्वरूप है, अपूर्व स्पर्धक बनते हैं पूर्व स्पर्धकों में से अपकर्षण होकर,
लेकर विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो इतना कम वाला,
फिर कम वाले वहाँ स्पर्धक जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक बनते हैं, अपूर्व स्पर्धक बनते हैं ऐसा कुछ नहीं कहा खास, एक स्थानीय बनते हैं,
अनुभव कम होते जाएगा,
बिल्कुल, यानी बंधने वाले में भी अनुभव कम बंधेगा, परंतु स्पर्धक रूप से इतना ही है, पूर्व है कि अपूर्व है ऐसा उसने यहाँ तो नहीं कहा है। अब हम 41 प्रश्न पर आए, ये सूत्र हमने कल पढ़ा था, हिंदी फिर पढ़ते हैं, 40 पेज पर लास्ट लाइन में, चारों संज्वलनों का शेष सब अनुभाव सत्व या अनुभाग सत्व कृष्टि स्वरूप है, यानी शेष यानी उच्चिष्ठावली और नवकबंध को छोड़कर, चार संज्वलनों के दो समय कम दो आवली प्रमाण नवकबंध स्वरूप अनुभाग को, दो समय कम दो अवली, मैं एक समय कम दो अवली कह रही थी,
या वो समय कितनी है इसके, दो समय
नवबंध स्वरूप अनुभाग को और क्रोध संज्वलन के उदयावली प्रविष्ट अनुभाग को छोड़कर शेष चारों संज्वलनों का अनुभाग सत्कर्म संपूर्ण ही इस समय कृष्टि स्वरूप परिणत हो गया है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। इसलिए कृष्टिकरण काल का जब तक अंतिम समय प्राप्त होता है तब तक कृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश पिंड से स्पर्धक स्वरूप संपूर्ण प्रदेश पिंड असंख्यात गुणा दिखाई देता है, क्योंकि उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण प्रदेश पिंड का ही वहां पर कृष्टि रूप से परिणमन देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? एक कृष्टि होती चली जाती है तो असंख्यात विभाग परमाणु कृष्टि स्वरूप होते रहते हैं। अंतिम समय प्राप्त होने के पहले तक तो ऐसा ही होता है। पुनः कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में नवबंध और उच्चिष्टावली को छोड़कर चारों संयोजनों का संपूर्ण ही प्रदेश पुंज कृष्टि रूप से परिणत हो गया है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। कृष्टिकरण काल जब तक समाप्त होता है तब तक दिखने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा दृश्यमान की बात कृष्टिया स्वस्थान में एक गोपुच्छाकार रूप से अवस्थित रहती है। यानी कृष्टियों की अपनी एक गोपुच्छा होती है तथा स्पर्धकगत प्रदेश पुंज भी अपने स्वस्थान में एक गोपुच्छा रूप होकर अवस्थित रहता है।
ये नीचे ये प्रथम स्थिति तो वो ऊपर दूसरी स्थिति
नहीं, स्थिति की अपेक्षा बात नहीं है। जब हम स्पर्धक की अपेक्षा रचना दिखाते हैं इन्हें वर्गणा वर्गणा प्रति और कृष्टि कृष्टि प्रति जो प्रदेशों का उच्चय घटते हुए क्रम है, ये अनुभाग की अपेक्षा ही बात है। ये कृष्टिया बनी उसकी एक अपनी गोपुच्छा और ये जो स्पर्धक थे उसकी अपनी एक गोपुच्छा, ये दो अलग अलग गोपुच्छा हो। हर समय बन रही है
द्वितीय स्थिति में।
हाँ,
की जो गोपुच्छा है वो द्वितीय स्थिति में
भले, परंतु ये गोपुच्छा प्रत्येक निषेक में है। हम हमेशा घोटाला यही होता है अनुभाग की और निषेक का घोटाला क्या होता है, हम निषेक की अपेक्षा विचार करते हैं और यहाँ प्रत्येक निषेक में सभी अनुभाग के वेरिएशन है, इसलिए हमेशा संदृष्टि बनाते समय उनको आड़ा बनाते हैं। हमेशा ये पूर्व कृष्टि यहाँ पर बताएंगे ये इस तरह से थी, अब अपूर्व कृष्टि बनी तो यहाँ बनी, फिर और बनी और फिर और बनी, इसमें से द्रव्य निकल। ये हरेक निषेक में ऐसा हो रहा है। ये नीचे इसलिए बताते हैं कि उसका अनुभाग अधिक या कम है वो समझने के लिए, नहीं तो हम लेफ्ट से राइट किसका अनुभाग कहाँ कम कहाँ ज्यादा लेना है तो पूर्व राइट साइड में रखते हैं और अपूर्व अपूर्व जो बनती है स्पर्धक हो या कृष्टि हो वो लेफ्ट साइड में बताते हैं। क्यों आड़ा इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रत्येक निषेक में इससे अनुभाग वाले अलग अलग हैं और हर निषेक में यह हो रहा है।
यहाँ पे उदयावली में तो प्रविष्ट हो गए जो निषेक है वहाँ पे भी ये कृष्टि बनेगी?
नहीं, वहाँ तो उन्होंने नहीं कहा था। उदयावली में अगर कृष्टि बनती है तो द्वितीय स्थिति में बनती है बताए ना,
द्वितीय स्थिति पर उनका प्रश्न था, प्रथम स्थिति में भी कृष्टि बनती है अपनी जो है।
ये जो गोपुच्छा कहो या कुछ है ये निषेक की अपेक्षा नहीं सोचना, इसको अनुभाग की अपेक्षा इस गोपुच्छा को सोचना।
पर निषेक तो नीचे भी प्रथम स्थिति में थी और द्वितीय,
वो तो कल ही बात इसकी हुई थी। द्वितीय स्थिति में ही कृष्टियां बन रही, जैसे प्रथम उपशम के काल में उपशम कहाँ हुआ पहले स्थिति में कि दूसरे, ऐसे ही कृष्टियां कहाँ बनी द्वितीय स्थिति में, बाकी सारा स्पर्धक रूप तो नष्ट हो गए है परिपूर्ण रीति से, केवल उच्चिष्ठावली और नवकबंध स्पर्धक रूप से है। वो नवकबंध है उसका भी कृष्टि होने वाली है और जो उच्चिष्ठावली हो तो एक एक समय में कृष्टि रूप होकर उदय में आने वाली है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कृष्टियों का अपना एक उपेक्षा होगी और स्पर्धागत जो प्रदेश पुंज है उनकी अपनी एक उपेक्षा होगा, परंतु कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर दिखने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा समस्त ही प्रदेश पुंज एक गोपुच्छाकार रूप से परिणाम करके अवस्थित रहता है, तो कौन सी गोपुच्छा बाकी रहेगी? हाँ, इसीलिए दोनों ही नहीं सुन रहे थे। ये वाक्य फिर पढ़ते, पहले क्या की पोजीशन थी, कृष्टियों की अपनी गोपुच्छा और स्पर्धकों की अपनी गोपुच्छा, तो अंतिम समय में जितने बाकी है स्पर्धक सारे सारे कृष्टि रूप हुए, तो कृष्टियों की एक गोपुच्छा रहेगी। देखो फिर पढ़ूंगी मैं नीचे से छठी लाइन, कृष्टिकरण काल जब तक समाप्त होता है तब तक दिखने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा कृष्टिया स्वस्थान में एक गोपुच्छा का रूप से अवस्थित रहती है, तथा स्पर्धगत प्रदेश पुंज भी अपने स्वस्थान में एक गोपुच्छा रूप होकर अवस्थित रहता है, परंतु कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर, कृष्टकरण हुआ, कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर दिखने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा समस्त ही प्रदेश पुंज एक गोपुच्छाकार रूप से परिणमन करके अवस्थित रहता है, यह यहाँ ग्रहण करना चाहिए। बाद में ख्याल में, यानी सभी स्पर्धक अभी कृष्ण रूप हो गए, ऊपर स्पर्धक ही नहीं रहे, तो उसकी गोपुच्छा का सवाल नहीं है। विशेषार्थ, कृष्टिकरण काल के अंतिम समय तक चारों संजलनों का अनुभाग स्पर्धक रूप में भी अवस्थित रहता है, और जो अनुभाग कृष्ण रूप परिणम गया है वह भी अपने रूप में अवस्थित और उल्टा हुआ है अवस्थित रहता है। इसलिए यहाँ पर पूरे अनुभाग की दो गोपुच्छाएं बन जाती, अनुभाग में ही ये लगाना है, निषेक में नहीं। इन दोनों गोपुच्छाओं के स्वरूप का निर्देश पहले ही कराए हैं, किंतु जिस समय कृष्टि वेदन काल प्रारंभ होता है उसी समय जितना भी स्पर्धक स्वरूप अनुभाग है वह सब एक गोपुच्छा का रूप से परिणत होकर दिखाई देने लगता है, यह सूत्र का तात्पर्य। प्रत्येक निषेक में जो अनुभाग स्पर्धक रूप थे वो सारे अभी कृष्ण रूप हो गए, स्पर्धक रूप अनुभाग बाकी नहीं है, वो नवक बंद की बात छोड़ दो। तम्मी चेव पढ़म समय कोहस्य पढ़म संघ किट्टी दो पदे सगम ओकड्डीयुण पढ़म ठिदिम करे दी। उसी कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में से प्रदेश पुंज का आकर्षण करके प्रथम स्थिति को करता है। यहाँ तो 12 संग्रह कृष्टि हुई थी, क्रोध की 3, मान की 3, माया की 3, लोक की 3। अभी जो प्रथम स्थिति बनेगी मात्र क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि में से परमाणु नीचे आकर बनेगी, यानी वे ही परमाणु नीचे आएंगे, अभी उसको प्रथम कहेंगे। कल हमने ये बात की थी कृष्टिकरण काल में जिसको हमने प्रथम कृष्टि कही, संग्रह कृष्टि, नीचे के यानी 3-3 संग्रह कृष्टि हुई ना, नीचे के पहले फिर दूसरी फिर तीसरी ऊपर की। अब कृष्टि वेदक काल में जो पहले उदय में आएगी उसको प्रथम कहेंगे। तो प्रथम अभी क्रोध की प्रथम का अर्थ होता है टॉप मोस्ट, अधिक अनुभाग वाले नाम यहाँ चेंज हो रहे हैं। देखो उसी कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में से प्रदेश पुंज का आकर्षण करके प्रथम स्थिति को करता है। ये प्रथम स्थिति निषेकों की अपेक्षा बता रहे हैं, और कौन से अनुभाग नीचे आ रहे हैं? तो प्रथम संग्रह कृष्टि वाले। उसी कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में कृष्टियों को प्रवेशित करता हुआ सर्वप्रथम क्रोध संज्वलन की ही प्रथम संग्रह कृष्टि में से प्रदेश पुंज को आकर्षित करके अपने वेदक काल से
एक अवली प्रमाण अधिक करके पहली स्थिति कितनी बनाएगा, तो अपना वेदक काल प्लस अवली इतनी उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। क्यों? उसकी भी लास्ट जो अवली है ना वो बाकी रहेगी क्रोध रूप से, फिर मान का उदय शुरू होगा। सॉरी सॉरी, मान का नहीं, अभी द्वितीय संग्रह पुष्टि का होगा। सॉरी, बराबर है, प्रथम संग्रह पुष्टि के बाद द्वितीय, फिर तृतीय का उदय, तो ऐसा ही चलेगा। मैं एकदम लास्ट पर चली गई। तो यहाँ प्रथम संग्रह पुष्टि के जो परमाणु नीचे आए हैं, तो प्रथम संग्रह पुष्टि का जो वेदक काल है उससे एक अवली प्रमाण अधिक करके प्रथम स्थिति को उत्पन्न करता है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। यहाँ तो यह ऊपर की बिंदी दिखाई मुझे रही है, यह प्रथम स्थिति, इससे आगे जो क्रोध वेदक काल है, अभी जितना क्रोध वेदक काल बचा है, अपगत वेद होने पर जो क्रोध वेदक काल था उसका ये त्रिभाग है। अब ये जो त्रिभाग में से यानी अभी जो बचा है ना, अभी उसका भी साधिक तृतीय भाग प्रमाण ये है। यानी प्रथम संग्रह पृष्टि का उदय साधिक त्रिभाग में है, द्वितीय संग्रह पृष्टि का फिर कुछ कम और फिर कुछ कम, उसके भी तीन भाग हो गए। यानी पृष्टि वेदक काल के भी तीन बार तीन भाग कर दिए। बस देखो, यह प्रथम स्थिति, इससे आगे जो क्रोध वेदक काल है उसके साधिक तृतीय भाग प्रमाण जाननी चाहिए। इस प्रकार प्रथम स्थिति को करता हुआ अपकर्षित किए गए प्रदेश पुंज को उदय में स्तोक देता है, उससे अगली स्थिति में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। अभी जो पहली स्थिति बनी, इस समय स्पर्धक रूप तो एक आवली प्रमाण बाकी रहते, उच्चिष्ट आवली, और ये सारे द्वितीय स्थिति में जो प्रदेश पुंज, उसमें से किसको नीचे लाएगा? प्रथम संग्रह पुष्टि वाले परमाणुओं को, और उससे ये बनी, तो किस रूप से बनी? तो उदय में जितना दिया उसे दूसरे समय में असंख्यात गुना दिया, उसे तीसरे में असंख्यात गुना, चौथे में असंख्यात गुना, इसको क्या कहेंगे? बोलो, गुणश्रेणी। कैसी? उदयादि, उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी है। अलग अलग जगह अलग अलग गुणश्रेणी थी, उदयावली अलग होती है, गुणश्रेणी अलग होती है, ऐसा भी होता है। यहाँ पर उदय के समय से लेकर ये हो रही है, इसलिए क्या कहा? देखो, इस प्रकार प्रथम स्थिति को करता हुआ अपकर्षित किए गए प्रदेश पुंज को उदय में स्तोक देता है, उससे अगली स्थिति में यानी दो नंबर के ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ प्रथम संग्रह पुष्टि के वेदक काल से एक आवली प्रमाण अधिक करके निक्षिप्त करता है। यानी ये पूरी ही गुणश्रेणी रूप से रचना होगी पहली स्थिति, उदय के समय से लेकर एक आवली अधिक करके इस तरह से गुणश्रेणी रूप से यहाँ रचना होने वाली। पहली संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे आए हैं और उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से पूरे ही प्रथम स्थिति में दिए गए। उससे द्वितीय स्थिति के आदि स्थिति में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, और उससे ऊपर सर्वत्र असंख्यातवा भागहीन प्रदेश पुंज का निक्षेप करता है। यानी यहाँ जितना हुआ है द्वितीय, क्योंकि जितने परमाणु अपकर्षित हुए हैं द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित हुए हैं, तो प्रथम स्थिति में भी दिए जाएंगे और द्वितीय स्थिति में भी दिए जाएंगे अपने अपने नीचे। निषेक की अपेक्षा हम अभी यहाँ बता रहे हैं, द्वितीय स्थिति में से तो ऊपर के परमाणु नीचे आते हैं अपकर्षण करके, तो पहले स्थिति में भी जाएंगे और द्वितीय स्थिति में भी फिर उसकी रचना होगी। तो यहाँ जितना यहाँ दिया उससे असंख्यात गुना यहाँ पर भी दिया, ऑलरेडी था उसमें और यहाँ पर दिया, और फिर ऊपर घटते क्रम से देंगे, चय हीन क्रम से देंगे।
एक समय अधिक अवली है किस में एक समय लेकर
एक समय नहीं, एक समय कम है,
एक आवली अधिक बोल रहे
हो, एक आवली है ये जो पहली स्थिति बनाई,
कितनी बड़ी है
यहाँ प्रथम संग्रह पुष्टि का जो वेदक काल है उसमें एक आवली एक्स्ट्रा करो, क्योंकि ये अभी एक एक समय में एक एक खिर जाएगा। जब आवली प्रमाण रहेगी तो उसको ऐसे रखेंगे उपचिष्टावली, द्वितीय संग्रह पुष्टि का उदय चालू हो जाएगा, द्वितीय स्थिति में से वो नीचे आएगा। देखो उससे द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, उससे ऊपर सर्वत्र असंख्यात व भागहीन प्रदेश पुंज का निक्षेप करता है। ये बात ख्याल में आई ना, यानी ऊपर एक एक चय से हीन होगा, नीचे से असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, प्रथम स्थिति में तो दिया दिया, दूसरे स्थिति के पहले निषेध में भी असंख्यात गुणा दिया और उसके ऊपर सर्वत्र हीन दिया। वो कृष्टियों में था और यहाँ निषेक की अपेक्षा बात चल रही है। यहाँ निषेक रचना हो रही है, गुण श्रेणी किसमें होती है? तथा गुण श्रेणी निक्षेप सर्वत्र गलित शेष जानना, इसका अर्थ बोलो अभी। हाँ, जो गुणश्रेणी निक्षेप जो है, निक्षेप है कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से देंगे,
फिक्स आयाम वाली गुणश्रेणी बनाएगा और एक एक निषेक चलता जाएगा तो
फिर फिक्स आयाम वाली क्यों कहते हैं?
गलित अवशेष, सॉरी,
फिक्स आयाम वाली जो अवस्थित हो गई, इतनी बनाई उसने, दूसरे समय से क्या होगा, एक समय गल गया तो इसमें वो गुणित प्रमाण में दिया जाएगा, फिर और एक समय कम हुआ, और क्योंकि बनाते समय ही प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदक काल प्लस आवली प्रमाण गुणश्रेणी बनाई थी, एक एक समय गल गया तो प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदक काल तब तक चला, वो आवली काल उसके वेदक काल में गिना ही नहीं था, गुणश्रेणी तो बनी थी आवली एक्स्ट्रा, वो बाजू में रखेंगे फिर दूसरी संग्रह पुष्टि का वहां शुरू हो जाएगा, उसकी निषेक रचना होगी। हाँ, जब इसकी आवली बाकी रहेगी तो इसको उच्चिष्ट आवली कहेंगे, द्वितीय संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे आएंगे। पुष्टि मत कहो उसको, वो द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थिति यानी निषेक की अपेक्षा बन जाए। जब हम कृष्टि की बात की थी, प्रथम संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि सभी अभी पड़े हैं परमाणु सत्ता में, अभी पहले कृष्टि वाले परमाणु नीचे आए हैं, निषेकों की अपेक्षा भी बात करो तो उदय के समय से लेकर उनके अंतर्मूर्त प्रमाण रचना हुई है, उसमें परमाणु कौन से अनुभाग वाले हैं? प्रथम संग्रह कृष्टि वाले। अब यहां जो गुण श्रेणी है वो निषेकों की अपेक्षा गुणश्रेणी, उसमें प्रदेश पुंज कितने दिए हैं उसकी अपेक्षा बात है, यहाँ भी कृष्टि और स्पर्धक की बात नहीं हो रही, घोटाला यहीं पर हो रहा है ना। यहाँ स्थिति, ये जो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति कह रहे हैं वो निषेक की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा,
अंतरकरण से चली आ रही है, वही है जो अंतरकरण में हमने किया।
कौन सी?
बनाई।
हाँ बिल्कुल, अंदर किया था तभी। हाँ वही है, प्रथम स्थिति वेरिएशन होती है, क्योंकि जब गल जाता है तो उसके परमाणु नष्ट होते हैं, उच्चिष्टावली रहती है, फिर और दूसरे परमाणु आकर उसकी प्रथम स्थिति बनती है, परंतु द्वितीय स्थिति का तो वहां का वहां पड़ा है, अंतर वैसा का वैसा चल रहा है। हाँ, उसमें वहां रहते हुए उसके अनुभाग में जो वेरिएशन हो रहा है, पहले स्पर्धक रूप थे, फिर अपूर्व स्पर्धक बने, फिर पुष्टि बनी, अंतर कम ज्यादा होगा परंतु द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक की पोजीशन वही रहेगी। अंतर कभी क्या हुआ, अवली प्रमाण बाकी रह गए, उच्चिष्ट अवली तो अंतर बढ़ गया, फिर अंतर मूल प्रमाण निषेक रचना हुई तो अंतर छोटा हुआ बीच का। तो यहाँ इसको क्या कहा, ये जो गुण श्रेणी बनी थी गलित अवशेष, गलित और अवशेष, यानी इतने निषेक को मिल गया, मान लेते 16 निषेक को मिल गया, एक गल गया उदय में आकर, 15 रहे उसमें गुण श्रेणी रूप से देंगे, फिर 14 रहे इस तरह से। देखो गुण श्रेणी निक्षेप यानी जितने निषेकों में गुणित प्रमाण में परमाणु दिया जाते हैं उसको गुण श्रेणी निक्षेप कहेंगे। सर्वत्र गलित शेष जानना यानी गलकर जो अवशेष रहेगा उतना रहेगा, फिर दोबारा जब ये खत्म हो गए तो दूसरे की फिर उसी पद्धति से रचना हो जाएगी। यहां पर क्रोध की प्रथम संग्रह पृष्टि ऐसा कहने पर जो पृष्टि कारक की तीसरी संग्रह पृष्टि है, देखो आई ना बात यहां पर, कल हमने लब्धि सार में से भी पढ़कर बताया, वह पृष्टि वेदक की प्रथम संग्रह पृष्टि ऐसा ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा, पहले हीन अनुभाग का उदय होगा फिर बाद में, क्योंकि पृष्टि वेदक काल के प्रथम समय से लेकर पश्चातानुपूर्वी के अनुसार क्रम से ही संग्रह पृष्ठियों का यहाँ पर वेदक पना देखा जाता है, क्योंकि पहले पहले अधिक अनुभाग वालों का वेदन चलेगा फिर वो हीन अनुभाग होगा, इसलिए वो सारे 12 संग्रह पृष्ठी भी एक के नीचे एक हमने देखी थी, नीचे वाली सब हीन अनुभाग वाली, यानी उदय शुरू होता तो क्रोध की प्रथम की शुरू हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे पुनः, यदि पृष्टि कारक की प्रथम संग्रह पृष्टि को यहाँ पर ग्रहण किया जाता है तो उसमें क्या दोष होता है, यानी जिसको हमने पहली पृष्टि कही थी पृष्टि करने के काल में नीचे वाली लोक की या कोई भी क्रोध की, ऐसा पूछने पर कहते हैं वेदी जाने वाली संग्रह पृष्टि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण बनती है और वेदी जाती है। क्या कहना चाहते हैं, जिसका उदय चल रहा है जिस संग्रह पृष्टि का तो उसके असंख्यात बहुभाग प्रमाण बनती है और वेदी जाती है, वेदी ने उदय भी असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, एकदम टॉप वाला उदय नहीं होता, मध्यम रीति से उदय चलेगा, तो पहले नीचे वाला कम अनुभाग वाला बंदर उदय होगा, फिर ऊपर का अगर करेंगे तो बाद में अधिक अनुभाग वाला होगा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विशुद्धि तो बढ़ रही है तो क्रम से हीन अनुभाग की तरफ जाएगा बंद भी और उदय भी। अब हम नीचे से उसका नंबरिंग करेंगे, क्रोध की प्रथम संग्रह पृष्टि नीचे वाली उदय में आती है ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ये कहते इसलिए पहली किसको कहना, ऊपर वाली को पहली करना, जिसको हम तीसरी कह रहे थे पृष्टिकरण के काल में उसको पृष्टि वेदक के काल में, जिसको पहली कह रहे थे उसको तीसरी कहेंगे, जिसको तीसरी कहते उसको पहली कहेंगे, ये बात यहाँ कहते हैं।
उसको मटेरियलाइजेशन में लिफो बनते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो बाद बने थे और जो ऋषभ हो गए ना, उसको फिफो दो टर्म आती है मटेरियल इंजीनियरिंग, लिफो और फिफो, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऋषभ का जो फर्स्ट बने वो पहले उदय में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है लिफो चल रहा है, लास्ट इन जो बने थे वो फर्स्ट आउट,
सभी एक साथ बने हैं,
एक दो तीन जिसके बाद
में
बनी एक टाइम में परंतु उसका अनुभव की अपेक्षा क्रम अलग है। देखो तथा ये तो क्या यहाँ कहते हैं, यदि यदि यानी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यदि हम मानेंगे नीचे का ही उदय पहले आता है तो रूल क्या है, हाँ असंख्यात अनंत नहीं असंख्यात बहुभाग प्रमाण बनती भी है और उदय में भी आती है, तथा बंद उदय दोनों ही प्रति समय अनंत गुणे हीन होते जाते हैं, ऐसा नियम है, क्योंकि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है और ये अनुभाग का बंदर उदय घटते चले जाते हैं। अब इस नियम के होने पर जो संग्रह पृष्टि
अनुभाग की अपेक्षा बड़ी है वही पहले में उदय में आती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इससे अन्यथा ग्रहण करने पर प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदक काल समाप्त होने पर तदनंतर समय में दूसरी संग्रह पुष्टि का वेदन करने वाला उसके असंख्यात बहुभाग को बांधता और वेदता है, ऐसा होने पर उस काल में होने वाले बंध उदय पूर्व बंध और उदय से अनंत गुणे प्राप्त होते हैं। यदि हम वो पहले वाले को ही प्रथम से दूसरा और तृतीय नाम देंगे तो की बात, परंतु यह इष्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय में अनंत गुणित क्रम से विशुद्ध रूप परिणामों की वृद्धि होने पर उन बंध हृदय के उस रूप प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। अतएव कृष्टि कारक के जो तीसरी संग्रह कृष्टि है, कारक की बात है, वह यहाँ कृष्टि वेदक के प्रथम संग्रह कृष्टि ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये बात ख्याल में आती है नितिन भाई का, क्या कहा? क्रोध के लिए यही होगा कि सभी में यही बात लागू होगी, यहाँ क्रोध की बात चल रही है, परंतु सभी में यही, पहले ने ऊपर वाली वो पहली और नीचे वाली तीसरी, दूसरे को तो दूसरे ही नंबर होगा कहीं से भी ले लो। तो ये बात उन्होंने विस्तार से बता दी। इसी प्रकार मानादिक की अपेक्षा भी जहाँ जहाँ कृष्टि वेदक के प्रथम संग्रह कृष्टि कहेंगे वहाँ वहाँ कृष्टिकरण के काल में जो तीसरी संग्रह कृष्टि है वही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा अनंतर पूर्व कहे गए दोष का प्रसंग प्राप्त होता है। नीचे वाली कृष्टि का पहले उदय कहेंगे और बाद में ऊपर वाले कहेंगे तो पहले कम अनुभाग का बंद उदय था और बाद में अधिक अनुभाग बंद होने लगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ रही है। इसी प्रकार प्रथम संग्रह पृष्टि का अपकर्षण करके वेदन करने वाला जीव क्या सामान्य रूप से अपनी सभी अंतर पृष्टियों को उदय में प्रविष्ट कराता है या कोई विशेषता है, ऐसी आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं, क्योंकि पृष्टि भी अनंत बनी है, वर्तमान एक निषेक जो उदय स्वरूप है उसमें अनुभाग की अपेक्षा वेरिएशन देखे तो अनंत है अलग अलग, तो क्या सभी का उदय होता है एट अ टाइम, किस रूप उदय होगा उसकी बात अभी बताएंगे। ताहे कोहस्य पढ़माए संघ किट्टीए असंखेज्जा भागा उदिन्ना, उस कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में इसी क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह कृष्टि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण वह उदय को प्राप्त होते हैं। दोनों ही ओर के असंख्यात वा भाग छोड़ दें और असंख्यात बहुभाग जो बीच वाले जो मध्यम जो है वो उदय रूप हो, क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि से लेकर अधस्तन असंख्यात वे भाग प्रमाण तथा उसी की उत्कृष्ट कृष्टि से लेकर उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर शेष बीच की असंख्यात भूभाग प्रमाण कृष्टियां उस समय उदय को प्राप्त होती है। अब ये वर्तमान निषेक जो उदय रूप है ये इतना निषेक उदय रूप चल रहा है उसमें ये अधिक अनुभाग वाला है, ये कम अनुभाग वाला है, उसको हम ऐसा अनुभाग बताने के लिए ऐसा पकड़ेंगे, ये उत्कृष्ट की ओर का ये जघन्य की ओर का, तो कहते हैं जघन्य की ओर असंख्यातवा भाग छोड़ दो और उत्कृष्ट की ओर असंख्यातवा भाग छोड़ दो, बीच वाला असंख्यात बहुभाग प्रमाण उदय रहेगा कृष्टि में। ये तो आसान है ना समझने, क्योंकि अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग की विषयभूत सदृश धन वाली कृष्टियों का परिणाम विशेष का अवलंबन लेकर मध्यम कृष्टि रूप से ही उदय परिणाम होता है। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है।
तो क्या इनका उदय नहीं होता है? परमाणु तो उदय रूप हो ही, तो ये बीच वाले कृष्ण रूप होकर उदय में आते हैं। इतने अधिक तीव्र अधिक अनुभाग का भी नहीं होगा, मिनिमम जघन्य का भी नहीं होगा, दोनों ओर छोड़ दो, बीच वाले जैसा उदय चलेगा।
इस प्रकार उदय का कथन करके अब क्रोध संज्वलन का अनुभाग बंध किस प्रकार प्रवृत्त होता है, ऐसी आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं।
ये तो उदय किस रूप से होता है, तो जघन्य उत्कृष्ट छोड़कर बीच वाला असंख्यात बहुभाग होता है, तो कहते बंध किस प्रकार होगा यहाँ पर, उसकी भी बात बता रहे हैं।
एदिस्य चैव कोहस्य पढ़माये संघ किट्टीये असंख्येज्जा भागा बज्जन्ति, तथा इसी क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि के असंख्यात भूभाग बंध को प्राप्त होते हैं।
उदय भी इतना चल रहा है, बंध भी, अभी उसमें कुछ वेरिएशन है वो बताएंगे, परंतु जो कथन है असंख्यात बहुभाग वो दोनों के लिए लागू होता है। इतनी बात ख्याल में आई या नहीं आई?
क्योंकि उदय से अनंत गुणे हीन रूप से प्रवृत्त होने वाले बंध की,
बंध कैसा है, जितना उदय है उससे अनंत गुणा हीन होकर बंध हो रहा है,
तो बंध की उस रूप से प्रवृत्ति होने में विरोध का अभाव।
ये जो हम असंख्यात बहुभाग कह रहे वो टोटल है अनंत, वृष्टियों की संख्या अनंत है, वेरिएशंस, उसका हमने असंख्यात बहुभाग लिया। अनुभाग की अपेक्षा जितना अनुभाग का वहां उदय चल रहा है, बंध उससे अनंत गुणा हीन होकर बन रहा है, समझ में? नहीं तो ये उसके असंख्यात के साथ इस अनंत को कंपेयर नहीं करना है।
इसलिए उदय को प्राप्त हुई कृष्टियां बहुत है, उनसे ये बंध को प्राप्त होने वाली कृष्टियां विशेष हीन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उदय को प्राप्त हुई कृष्टियों के अधस्तन और उपरिम असंख्यात्वे भाग को छोड़कर शेष मध्यम बहुभाग स्वरूप से बंधने वाली कृष्टियों की प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है।
ये तो हमने उदय की बात बताई, अब बंधने वाले के ये जघन्य था और ये उदय रूप से, अब इसमें बंधन ऐसा होगा, जो उदय रूप का जघन्य था पहले तो टोटल कृष्टियों का जगह ने उत्कृष्ट निकाला था, उसमें से नीचे और ऊपर असंख्या का भाग छोड़े तो उदय रूप था, अब जो उदय वाले की रेंज है उसका नीचे और ऊपर का असंख्या का भाग छोड़ दो तो बीच वाला ये बंधने वाले की, ये उसका बंधने वाला अनुभाग है, हमने दोनों ओर छोड़ दिया,
इसका अर्थ क्या होता है समझ में आता है? इतना ये जो इतने है ना वो बंध भी है उदय भी है, उसको उभय कहेंगे, उसके ऊपर इतनी कृष्टियां मात्र उदय रूप है, इसमें बंध रूप नहीं है, और ये दोनों ही नहीं है, अनुभय है, अनुभय उदय भी नहीं और बंध भी नहीं, हाँ ये जो है उदय भी नहीं है बंध भी नहीं है, उसके नीचे आओ थोड़ा, उदय है परंतु बंध नहीं है, बीच में असंख्यात बहुभाग उदय भी है और बंध भी है, नीचे ये मात्र उदय है और सबसे नीचे अनुभय है, यानी दोनों ओर अनुभय है, फिर दोनों ओर मात्र उदय है और बीच में उदय भी और बंध भी है, तो उसको हम उभय कहेंगे।
ख्याल में आती ना बाकी?
एक चीज है कि यहाँ पर संक्रमण नहीं हो रहा है, संक्रमण हो रहा
है, ये उदय रूप की बात चल रही है, तो ये जो अनुभय जो है वो उभय रूप होकर उदय में आ रही है, उसको संक्रमण कहो आप, अनुभाग का संक्रमण, ये क्रोध के क्रोध से मान वगैरह उसकी बात चल रही है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो तो इतने बिजी इसलिए है कि एट ए टाइम तो एक बात समझना मुश्किल है, ये अनुपूर्वी संक्रमण वगैरह बात तो चलती रहती है। हाँ।
कृष्ण में अटक गए तो यानी सबका जगन्य उत्कृष्ट। फिर हमने उदय वाला जगन्य उत्कृष्ट देखा था, उदय उत्कृष्ट। फिर उसके बीच में बंध का जगन्य उत्कृष्ट देखा, यानी दोनों ओर अनुभव, फिर उदय, फिर यानी बाजू में, दोनों बाजू में अनुभव कहेंगे, फिर उदय रूप कहेंगे, फिर उभय कहेंगे, उभय वाले ज्यादा हैं, फिर उदय और फिर अनुभय। कहां पर आ गए? हाँ, 44 पर। देखो ऐसा आड़ा रखना है या खड़ा है, जैसे ऐसा अगर आप रखेंगे, ये दोनों ओर जगन, इधर जगन ही उत्कृष्ट, ये टोटल की अपेक्षा, फिर ये उदय का उत्कृष्ट, ये सॉरी उदय का उत्कृष्ट, उदय का जगन, बंध का जगन, बंध का उत्कृष्ट, दोनों ओर अनुभय, दोनों ओर अनुभय, बंद भी नहीं उदय भी नहीं, उसके अंदर आओ तो दोनों ओर उदय, और फिर और सेंटर में आओ तो उभय, बंद भी है और उदय भी है। ये तो एक समय की बात है, दूसरे समय वो शिफ्ट होते चला जाएगा, जगन्य की ओर शिफ्ट होगा ना सारा, उदय भी और बंद भी जगन्य की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा, शिफ्ट होगा वो। देखो हम इसको पढ़ेंगे, शेषाओ दो संग किट्टियो न बज्जंती न वेदिज्जंती, क्रोध संजोलन की शेष दो संग्रह कृष्टियां न बनती और न वेदी जाती। तो अन्य की क्या बात होगी, अन्य मान माया लोभ में, उसका वेदन तो नहीं चल रहा है, उसका बंध तो चलता होगा कि नहीं चलता होगा। जब क्रोध के प्रथम, अब पढ़कर बता रहे कि सोच कर बता रहे?
नहीं, आपने क्या पूछा, क्रोध संजोलन की शेष दो संग्रह कृष्टियां न बनती है न वेदी जाती, इस समय
यानी अभी क्रोध के प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन चल रहा है, तो मान माया लोभ में क्या चल रहा है?
बंध।
कौन से
पुष्टि का मतलब?
कौन से, वही तो पूछ रही हूँ मैं।
तीनों तीनों नहीं,
क्रोध के प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन चल रहा है, तो मान और माया में प्रथम संग्रह पुष्टि का बंध होगा। अभी पता नहीं इसमें क्या लिखा है,
क्योंकि अभी तो अनुवाद ज्यादा बन रहा है।
हाँ, जब इनका उदय चल रहा है तो उनके प्रथम ही संग्रह पृष्ठ बनती रहती है, क्योंकि वो नीचे की ओर से है
ना। तीसरे के बल्कि मतलब तीसरे,
नहीं नहीं नहीं, अभी उसको पहला दूसरा तीसरा यही नंबर देना है।
अधिक अनुभव बन
रहा है, अधिक वाला। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम, क्रोध संज्वलन के शेष दो संग्रह कृष्टि यानी दूसरे और तीसरे नंबर की न बनती है न वेदी जाती, क्योंकि यथाक्रम ही संग्रह कृष्टियों का वेदन करने वाले जीव के प्रथम संग्रह कृष्टि के वेदन करने की अवस्था में शेष दो संग्रह कृष्टियों का उदय होना असंभव है, क्योंकि वेदन प्रथम संग्रह पुष्टि का चल रहा है और वो क्रम से आएगा एक एक के बाद। कारण कि जिस कषाय को, जिस कषाय की, वो स्पष्ट दिख रहा है, जिस कषाय की जिस पुष्टि का वेदन करता है उसके उस रूप से ही बंध होता है, प्रथम संग्रह पुष्टि का उदय हो रहा है कषाय का, तो उस कषाय का उसी रूप से बंद हो रहा है, ऐसा नियम देखा जाता है। मान माया और लोभ लाभ हुआ, लोभ कषायों की अपेक्षा भी, ये लाइन के ऊपर है ना, वो तो मात्रा है, वो इकार है, वो नहीं आ रहे। मान माया और लोभ कषायों की अपेक्षा भी अपनी अपनी प्रथम संग्रह कृष्टियों का वेदन करते समय उन कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण वे बंध को प्राप्त होती है, शेष दो संग्रह कृष्टियां नहीं बनती। अब तो अपने अपने कषाय सहित बात की, अन्य कषायों का क्या बंद हो रहा है वो अभी बात नहीं उठाइए। तथा प्रकृत में उन्हीं की समस्त संग्रह कृष्टियां तब तक नहीं ही वेदी जाती, क्योंकि क्रोध के वेदक काल के भीतर उनकी उदय प्रवृत्ति होने में विरोध है। यानी जब क्रोध वेदक काल चल रहा है, अभी बीच में ही मान माया लोक का उदय नहीं होगा, ये बात बतानी चाहिए। इस प्रकार यह अर्थ भी इसी सूत्र में लीन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा था, क्रोध की अन्य दो संग्रह कृष्टियां न बनती है न वेदी जाती, अन्य कषाय में वो वेदी नहीं जाती, बनती नहीं, ऐसा नहीं कहा। विशेषकर अश्वकर्ण करण काल के संपन्न होने पर दूसरा त्रिभाग कृष्टिकरण का है। एक कृष्टिकरण की बात उठाई फिर से, पहला अपूर्व सॉरी अश्वकर्ण वाला अपूर्व स्पर्धक बने थे, दूसरा कृष्टिकरण वाला। जब पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों का वेदन करते हुए प्रथम स्थिति में एक आवली काल शेष रहता है, तब पुष्टिकरण का काल समाप्त होकर अगले समय में यानी नेक्स्ट समय में यह जीव क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में से प्रदेश कुंज का अपकर्षण करके उसकी प्रथम स्थिति करता है। अब ये निषेकों की अपेक्षा समझना है, और यहीं से क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन काल प्रारंभ हो जाता है। क्रम यह है, क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट पुष्टियों को छोड़कर बीच की असंख्यात बहुभाग प्रमाण पुष्टियों का उदय होता है, तथा इसी क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि संबंधी जो पुष्टियां उदय रूप होती है उनसे विशेषहीन पुष्टियां बंध को प्राप्त होती है। ये अभी हमने समझा था ना, वही फिर दोबारा ले। यहां प्रथम समय में न तो क्रोध संज्वलन की शेष रही दो संग्रह पुष्टियों का उदय होता है और न उदय होता है, सॉरी न उदय होता है न बंद होता है, और न ही इस समय में मान माया और लोभ संज्वलन संबंधी संग्रह पुष्टियों का ही उदय और बंद होता है।
तो यहाँ पे जो बंद हो रहा है मान माया का वो
हो रहा है,
ये तो
नहीं, ये बात सही नहीं है, उनके अन्य दो का नहीं है, उनके प्रथम संग्रह पुष्टि का बंद है, क्योंकि क्रोध वेदक काल में क्रोध मान माया लोभ चारों ही बंद हो रहे हैं, उनके अन्य संग्रह पुष्टियों का बंद नहीं हो रहा, उनके प्रथम संग्रह पुष्टि का हो रहा है। यहाँ लिखा ना, नहीं इस समय में मान माया और लोभ संज्वलन संबंधी दो दूसरी और तीसरी शेष दो संग्रह पुष्टियों का ही उदय और बंद है, यानी उदय तो तीनों का नहीं है। ऊपर क्या लिखा था, मान माया और लोक कषाय उनकी अपेक्षा भी, ऊपर का पढ़ रही हूं मैं 117.4 चौथी लाइन,
उनकी भी अपनी अपनी प्रथम संग्रह पुष्टियों का वेदन करते समय उनका जो ऐसा होगा वो ऐसा उसके बारे में बताया। उनमें तो वेदी नहीं जाती इतना ही बताया, बंद नहीं होता ये बात सही नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्रथम समय में न तो क्रोध संज्वलन की शेष रही दो संग्रह पुष्टियों का उदय होता है न बंद होता है, और न ही इस समय में मान माया और लोभ संज्वलन संबंधी संग्रह पुष्टियों का ही उदय होता है, इतना कहो।
और बंद का हटा देते,
हाँ और बंद छोड़ो। देखो फिर से ये विशेषांत वाला पैराग्राफ नीचे एक दो तीन चार पांचवी लाइन छठी में इसे पढ़ेंगे, और नहीं इस समय में यानी जब क्रोध वेदक काल चल रहा है प्रथम संग्रह पुष्टि का उस समय में मान माया और लोभ संज्वलन संबंधी संग्रह पुष्टियों का ही उदय होता है ऐसा पढ़ चाहिए। और बंद दो शब्द निकाल देना क्योंकि बंद तो उनका हो रहा है, जब क्रोध के प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन चल रहा है उदय चल रहा है तो मान माया लोक के प्रथम संग्रह पुष्टि का बंद हो रहा है यहाँ पर ऐसा, और बंद ये दो शब्द निकाल। ऐसा नियम है कि क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए इस जीव के प्रत्येक समय में परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है, इसलिए पुष्टि कारक के क्रोध संज्वलन की जिसे तीसरी संग्रह पुष्टि कहा गया है कारक की बात वेदन काल के समय वह पहली हो जाती है। कारण का निर्देश मूल टीका में किया ही है, इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। अब क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि संबंधी असंख्यातवे भाग प्रमाण अधस्तन और उपरिम नहीं बनने वाली और नहीं उदय को प्राप्त होने वाली पुष्टियों के अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। इसको हमने अनुभय कहा था, नहीं बनने वाली और नहीं उदय होने वाली तो नीचे की और ऊपर की ओर की जो अनुभय पुष्टियां हैं उसका प्रमाण बताएंगे। ऊपर पढ़माए संग किट्टिये हेठ दो जाओ किट्टियो न बज्जंती न वेदिज्जंती ताओ थोड़ा हो, नीचे वो सूत्र का फूल नहीं बनाया। प्रथम संग्रह पुष्टि की अधस्तन जो पुष्टियां न बनती है और न उदय को प्राप्त होती है वे अल्प है। जगन्य की ओर
वो कम है,
उनका प्रमाण कम है, नीचे की अनुदय कम है, अनुभय सॉरी ये जगन्य की और ये नीचे की ये ऊपर की बताए ना, नीचे की जो बंदरूप भी नहीं उदयरूप भी नहीं है
वो कम है,
जिसको हमने अनुभय कहा इनका प्रमाण इनमें से कम है।
ऊपर नीचे दोनों के ना?
नहीं नहीं अकेला नीचे की कम है, अभी ऊपर की थोड़ी ज्यादा होगी। देखो प्रथम संग्रह पुष्टि की अधस्तन जो पुष्टियां न बनती है न उदय को प्राप्त होती है वे अल्प है, ये तो पहला अल्प बहुत वो बताया उन्होंने। क्रोध संज्वलन संग्रह पुष्टि की जघन्य पुष्टि से लेकर अधस्तन असंख्यातवे भाग प्रमाण संबंधी जो पुष्टियां अबंध रूप है और अनुदय स्वरूप है वे अल्प है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अबंदर अनुदय करके हमने उसको अनुभय कहा था, जो दोनों ही नहीं है। अब कहते जाओ किट्टियो वेदिज्जंती न बज्जंती ताओ विशेषायो, जो पुष्टियां उदय को प्राप्त होती है किंतु बनती नहीं है वे विशेष अधिक है, नीचे की ओर वाली, नीचे की मात्र उदय रूप परंतु बंद रूप नहीं है उसको लिया।
नहीं
अभी ऊपर नहीं गए, ऐसा कहने पर इससे पूर्व सूत्र में कही गई नहीं बंधने वाली और उदय को नहीं प्राप्त होने वाली कृष्टियों के
उपरिम पृष्टि से लेकर बंध को प्राप्त होने वाली जगन्य पृष्टि संबंधी अधस्तन अनंतर पृष्टि के प्राप्त होने तक, क्या कहा? ये कहां से कहां तक? ये तो जो बंध भी नहीं उदय भी नहीं ऐसी, तो यहां से लेकर ये बंधने वाले की जगन्य वहां तक की जो पृष्टियां हैं उसकी बात ख्याल में तो नहीं कैसे बता रहे उनका वाक्य रचना देखो फिर पढ़ते। ऐसा कहने पर इससे पूर्व सूत्र में कही गई नहीं बनने वाली और उदय को नहीं प्राप्त होने वाली पुष्टियों के उपरिम पुष्टि से लेकर, यानी अनुभय जो थी अनुभय के ऊपर की पुष्टि से लेकर कहां तक? बंध को प्राप्त होने वाली जगन्य पुष्टि संबंधी अधस्तन अनंतर पुष्टि के प्राप्त होने तक, ये तो बनने वाली है इसको छोड़ो, उसके नीचे की पुष्टि नहीं बनने वाली है मात्र उदय रूप है, तो इन बिटवीन ये दो, ये जो है ये कैसी है? उदय रूप है परंतु बंद रूप नहीं है, परंतु ये जो नीचे की इसको हम एक नंबर देंगे तो ये जो दो है वो विशेष अधिक है। ये नीचे एक संबंधी है, इस स्थान में जो केवल उदय प्रायोगिक कृष्टियां हैं वे समस्त कृष्टि अध्वान के असंख्यातवे भाग प्रमाण होकर पूर्व सूत्र में कही गई कृष्टियों से विशेष अधिक है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो शंकाकार पूछते हैं विशेष का प्रमाण कितना है? उसका समाधान अधस्तन स्थान के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तो उसका प्रतिभाग क्या है? प्रतिभाग का अर्थ असंख्यातवा तो कह दिया, कौन सा वाला असंख्यात, कौन से असंख्यात से भाग देंगे? तो कहते हैं तत्प्रायोग्य पल्योपम का असंख्यातवा भाग प्रमाण उसका प्रतिभाग है, या फुल स्टॉप देना। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सूत्र के अविरुद्ध परम गुरु के उपदेश से जाना जाता
है।
हाँ होगी, क्योंकि है तो अनंत,
नहीं वो तो सब भी अनंत है,
उसका असंख्या तो भाग भी अनंत है। अब कहते तिससे चेव पढ़माए संघ किट्टिये उवरी जाओ किट्टियो न बज्जंती न वेदिज्जंती ताओ विशेष आया हो। यहाँ हमने एक नंबर दिया,
ये दो
नंबर दिया, अब ये तीन नंबर ऊपर का अनुभव है, अल्प बहुत
वाला
टॉप वाला अनुभव। देखो उसी प्रथम संग्रह पृष्ठ के ऊपर जो पृष्ठियां ना बनती है ना उदय को प्राप्त होती है वे विशेष अधिक है। ये कृष्टियां भी समस्त कृष्टि स्थान के असंख्यातवे भाग प्रमाण होकर पूर्व दो सूत्रों में कही गई कृष्टियों से विशेष अधिक हो जाती है। यहां पर विशेष अधिक का प्रमाण पहले के समान कहना चाहिए, यानी असंख्यात भाग अधिक है। उवरी जाओ वेदिज्जंती न बज्जंती ताओ विशेष आयो, यानी जिसका उदय है परंतु बंद नहीं है। पूर्व में कही गई, हाँ ऊपर वाला, पूर्व में कही गई कृष्टियों से ऊपर से जो कृष्टियां उदय को प्राप्त होती है किंतु बनती नहीं है वे विशेष अधिक है। ये चार नंबर पर आते, यहाँ का चार, ये इसमें बहुत घोटाले है ना। हमने क्या देखा था, ये टोटल नंबर ऑफ पृष्टिया, ये जगन्य या उत्कृष्ट कहना चाहिए तुम्हें, उत्कृष्ट ये जगन्य हम ऐसा देखते हैं ना, उसको नीचे ऊपर ऐसा देखेंगे। तो ये नीचे की ओर पहले हमने देखा था, ये नंबर एक। फिर इसके ऊपर मात्र उदय रूप बंद रूप नहीं, दो। ये तीसरा ऊपर का अनुभव है। ये चौथा ऊपर का मात्र उदय बंद नहीं है। ये तो सबसे कम असंख्यात भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक। बीच वाले दोनों जो है उभय रूप वो तो असंख्यात दो भाग हो गए। अब देखेंगे यह सूत्र सुगम है। बीच में जो कृष्टियां बनती है हृदय को प्राप्ति है वे असंख्यात गुणी है, क्योंकि असंख्यात वे भाग से असंख्यात बहुभाग असंख्यात गुण होता है। तो ये पांच नंबर इसको देंगे बीच वाले को जो उभय रूप है वो पांच नंबर। उत्कृष्ट में ऊपर से तीन और चार और बीच वाला पांचवा। ऊपर का सूत्र नहीं पढ़ा था, मज्जे जाओ किट्टियो बज्जंती न वेदिजंती च ताओ असंख्य जगुनाओ बज्जंती च वेदिजंती च न नहीं वा फिर पढ़ती हूँ। मज्जे जाओ किट्टियो बज्जंती च वेदिजंती च बंद भी है उदय भी है ताओ असंख्य जुगुनाओ। बीच में जो कृष्टियां बनती है और हृदय को प्राप्त होती है वे असंख्यात गुणी है, यानी जिसको हमने उभय कहा था, बनती भी है और हृदय को भी प्राप्त होती है। पूर्वोक्त अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर मध्य की शेष समस्त कृष्टियां बंधरूप और हृदय रूप है, क्योंकि उस रूप से अर्थात वे कृष्टियां जिस अनुभाग स्वरूप है उस रूप से उनके बंदर उदय की प्रवृत्ति होने का निषेध नहीं है। ये तो अभी उदय में आ रहे हैं इतनी बीच वाली, परंतु जो नया बंदर होगा वो द्वितीय स्थिति में पड़ा है, परंतु उसका अनुभाग किस रूप से बंधेगा तो इतना इस रेंज में बंधेगा, ये बात बताना चाहूंगा। ये तो अभी उदय में आकर चले जाएंगे, परंतु इतने जैसा अनुभाग अभी बंधने वाले परमाणुओं में पाया जाएगा। फिर पढ़ती हूँ। पूर्वोक्त अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर मध्य की शेष समस्त कृष्टियां बंधरूप और उदय रूप है, क्योंकि उस रूप से अर्थात वे कृष्टियां जिस अनुभाग स्वरूप है उस रूप से उनके बंदर उदय की प्रवृत्ति होने का निषेध नहीं है, इसलिए वे असंख्यात गुणी हो गई। यहाँ पर गुणकार तत्प्राज्ञ पल्लोकम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इस प्रकार कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में, ये एक समय की प्ररूपणा है, इस प्ररूपणा को करके अब कृष्टि वेदक काल को सर्वप्रथम स्थगित करके, वेदक काल को अभी यही ठप्पा कर रहे, कृष्टिकरण काल से संबंध रखने वाले गाथा सूत्रों के अर्थ की विभाषा करते हुए, ये हमेशा उन्होंने क्या किया, पहले तो पूरा विस्तार से वर्णन किया, फिर उस संबंधी गाथा सूत्रों को बीच में ले गया। अभी कृष्टि वेदक की बाद की बात दूसरे समय की वो गाथा के पश्चात बताएंगे।
तो कौन सी है वो जो वाली में से है?
हाँ हाँ, वो कषाय पाउडर वाली। अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। किट्टी वेदगद्धा ताव थवनिज्जा। अब कृष्टि वेदक काल को स्थगित करना चाहिए। थप्पो, क्योंकि कृष्टिकरण काल संबंधी सूत्रों का स्पर्श नहीं किए जाने पर, यानी व्याख्यान नहीं किए जाने पर, आगे उनके कथन के अवसर का अभाव है। अभी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे कहते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम उसी अवसर प्राप्त सूत्रों का स्पर्श करते हुए ने व्याख्यान करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। किट्टीकरण धाये ताव सुत्त फासो। सर्वप्रथम कृष्टिकरण काल के सूत्रों का स्पर्श करते हैं। पहले गाथा सूत्रों को हृदय में करके उनका उच्चारण किए बिना पुष्टिकरण काल का व्याख्यान किया है, परंतु इस समय तद विषयक सूत्रों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पूर्व में की गई प्ररूपणा विषयक निर्णय नहीं हो सकता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हमने उपशम श्रेणी में शपक में भी ऐसा ही शुरुआत में देखा था, पहले यहाँ लिखा ना, पहले गाथा सूत्रों को पढ़े बिना ही उसका व्याख्यान किया था, बाद में गाथा सूत्र बताया। तथ्य एकारस मूल गाथा, उस विषय में 11 मूल गाथाएं हैं, मात्र पुष्टिकरण काल से संबंधित 11 मूल गाथाएं। वहां पुष्टिकरण काल से संबद्ध 11 मूल गाथाएं हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। चारित्र मौखिक क्षपणा संबंधी 28 मूल गाथाएं कही है। देखो, मूल गाथाओं में 28 गाथाओं में पूरे चारित्र मौखिक क्षपणा बताई है, कैसा? उनमें से प्रस्थापक संबंधी 4 मूल गाथाओं का पहले ही व्याख्यान कराए हैं, तदनंतर संक्रामक संबंधी 4 मूल गाथाएं तथा अपवर्तना संबंधी 3 मूल गाथाएं। इस प्रकार इन 11 मूल गाथाओं का यथासंभव अपनी अपनी भाष्य गाथाओं के साथ व्याख्यान कराए। एक तो मूल गाथा और उसको समझाने वाली भाष्य गाथा, तो ये तो इतनी तो अपनी हो गई है, 4, 4, 8 और 3, 11। परंतु इस समय पुष्टिकरण काल से संबंध रखने वाली 11 मूल गाथाओं का अपनी भाष्य गाथाओं के साथ यथावसर प्राप्त व्याख्यान करेंगे, यही सूत्र का भावार्थ है। किंतु उनका एक साथ कथन करना अशक्य होने से यथाक्रम ही व्याख्यान करते हुए सर्वप्रथम प्रथम मूल गाथा की समुत्कीर्तना करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी ये अभी जाहिर है कि भी हमने जो पढ़ा है पुष्टिकरण का विषय, वही फिर दोबारा गाथाओं के आधार से भी रिपीट होगा, पक्का होगा अपना, है ना? पढ़माए मूल गाहाए समुत्कीर्तना, उनमें से प्रथम मूल गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। उन 11 मूल गाथाओं में से सबसे पहले प्रथम मूल गाथा की समुत्कीर्तना की जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। इन्हें भी गाथा पढ़ेंगे यहाँ पर ऊपर। केवदिया किट्टो तम निक सायम निकदि च किट्टियो, किट्टिये किम करणम लखन मद किम च किट्टिये। केवदिया किट्टियो चाहिए ना, किट्टो हुआ, पीछे सूत्र भी दिए कि हाँ, यहाँ तो लिखा है केवदिया किट्टियो, हाँ टी करना उसका, किट्टो है ना, किट्टियो इन्वर्टेड में डाले ना नीचे। पीछे भी लिखा है 335 पेज, केवदिया किट्टियो। यहाँ तो है ही है, हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं। ये तो हमने अभी गाथा पढ़ी, कृष्टिया कितनी है केवदिया, और किस कषाय में कितनी कृष्टियां हैं, कम्मे कषाय में कदी चिट्टियों, कृष्टि के कौन सा करण होता है, किट्टिये किम करणम, तथा कृष्टि का लक्षण क्या है, लक्षणम अध किम च किट्टिये। हाँ यहाँ गाथा नंबर चाहिए था 109। 162 वाली गाड़ी
वो 55 लोगों को जोड़ते हैं तो
अब इस गाथा का अर्थ कहते हैं। वह जैसे केवड़िया किट्टी ऐसा कहने पर चार कशाम की भेद विवक्षा किए बिना सामान्य से कितनी संग्रह कृष्टियां तथा कितनी अवय कृष्टियां होती है यह पृच्छा की गई है। इस प्रकार यह प्रथम अर्थ है। पुनः चारों कषायों की भेद विवक्षा करके उनमें से एक एक कषाय की कितनी पुष्टियां होती है इस प्रकार दूसरे अर्थ से युक्त इस गाथा में प्रतिबद्ध यह दूसरा पाद है कि कम्मी कषाय में कदीच किट्टियों मुखी बराबर करना। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की पृच्छा संग्रह पृष्टियों और अंतर पृष्टियों संबंधी प्रमाण विशेष की अपेक्षा रखती है। पुनः पृष्टियों को करने वाला स्थिति और अनुभव की अपेक्षा चारों संवेलनों के प्रदेश पुंज को क्या आकर्षित करता है या उत्कर्षित करता है इस प्रकार करण विशेष के उदाहरण रूप उसको करण का लक्षण वाला यह तीसरा अर्थ उस गाथा में प्रतिबद्ध तीसरा पाद है कि किट्टिये किम करणम कारण की पुष्टिकरण की अवस्था में कौन करण होता है क्या आकर्षण करण होता है या उत्कर्षण करण होता है या वे दोनों करण होते हैं इस प्रकार पृच्छा मुख से उस प्रकार के अर्थ के विषय में यह तीसरा पाद प्रतिबद्ध देखा जाता है। पुनः कृष्टिगत अनुभाग का किस प्रकार का लक्षण है क्या अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रम वृद्धि रूप से स्पर्धगत अनुभाग का ही यहाँ अवस्थान संभव है या अनंत गुण वृद्धि रूप से अनुभाग के अवस्थान का नियम वहाँ पाया जाता है। इस तरह इस प्रकार के पृच्छामुख से पृष्टियों के स्वरूप का निर्देश करने वाला चौथा अर्थ इसमें प्रतिबद्ध है। सूत्र का वह अंतिम पाद है लखन मध किंच किट्टिये इक्की बराबर करना। इसलिए कृष्टिकरण के काल से संबंध रखने वाले इस प्रकार के चौथे अर्थ संबंधी विशेषों का निर्णय करने के लिए पृच्छामुख से सूचित हुए समस्त विशेषों का सूचन करने वाला प्रथम गाथा सूत्र अवतीर्ण हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ विशेष की विभाषा करते हुए चूर्णी सूत्रकार आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं जो हम कल से देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सोझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।